नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम स्कंद 5 और नया आज अध्याय शुरू होने जा रहा है। अध्याय है 20। और अध्याय का नाम है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण, अध्याय 20। तो आज इसमें हम पहले श्लोक से लेके 4 श्लोक तक चर्चा करेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे का चिला प्रभुपाद का तात्पर्य नहीं है, और तीसरा और चौथा श्लोक इसका कंबाइंड है, तो ये 4 श्लोक तक हम जाएंगे। तो अध्याय 20 तो अभी हम इसका पहला और दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। और ये श्लोक जो है ये प्रोज फॉर्म में है, ये पोएट्री में नहीं है, तो इसको गाया नहीं जा सकता, तो इसको मैं पढ़ लेता हूं। श्री शुक उवाच। अतः परम प्लक्ष आदिनाम प्रमाण लक्षणम संस्थनतो वर्ष विभागा उपवर्णयति। महर्षि सुखदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात मैं प्लक्ष आदि अन्य 6 दीपों के आकार प्रकार लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। उसके बाद का है दूसरा श्लोक, वो भी मैं पढ़ता हूं। जम्बूदीपोयम यावत् प्रमाण विस्तारस्तावता शारो उद्धना परिवेशितो यथा मेरुर्जम्भवाख्येन लवणो दधिर अपि ततो द्विगुणा विशालेन प्लक्ष आख्येन परिक्षप्तो यथा परिखा बाह्यो उपवनेन प्लक्षो जम्बू प्रमाणो दीपा आख्या करोहणमया उतितो यत्र अग्निर उपासते सप्त जीवस्य अधिपति प्रिय व्रत आत्मजा इध्यम जीवा स्वदीपम सप्त वर्षाणि विजभ्य सप्त वर्ष नामभ्य आत्मजेभ्य आक्लया स्वमाम आत्मयोगेन उपरारम। तो इसका अनुवाद भी पढ़ देता हूं। पहले श्लोक का अनुवाद था, महर्षि सुखदेव गोस्वामी बोले, इसके पश्चात में प्लक्ष आदि अन्य 6 दीपों के आकार प्रकार लक्षण तथा स्थिति का वर्णन करूंगा। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत चारों ओर से जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी लवण के सागर से घिरा है। जम्बू द्वीप की चौड़ाई 1,00,000 योजन यानी 8,00,000 मील है, और लवण का सागर भी इतना ही चौड़ा है। जिस तरह कभी कभी दुर्ग की खाई उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप को घेरने वाला लवण सागर भी प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। प्लक्ष द्वीप की चौड़ाई लवण के सागर से दुगनी अर्थात 2,00,000 योजन यानी 16,00,000 मील है। प्लक्षद्वीप में स्वर्ण के समान चमकीला एक वृक्ष है जो जम्बूद्वीप स्थित जम्बू वृक्ष के बराबर ऊंचा है। इसके मूल भाग में सात ज्वालाओं की वाली अग्नि है। यह वृक्ष प्लक्ष का है, अतः इस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप पड़ा। यह द्वीप महाराज प्रियव्रत के एक पुत्र इद्मजिन द्वारा शासित था। उन्होंने सातों द्वीपों के नाम अपने सात पुत्रों के नामों पर रखे और उन्हें अपने पुत्रों को देकर सक्रिय जीवन से अवकाश प्राप्त कर वे स्वयं श्री भगवान की सेवा में लीन रहने लगे। अब तीसरा और चौथा श्लोक है, ये भी प्रोस फॉर्म में है, इसको गाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसको भी मैं पढ़ लेता हूं। शिवम यवसम सुभद्रम शांतम क्षेमम अमृतम अभयम इति वर्षाणि तेषु गिरयो नद्यश्च सप्तैवा अभिज्ञाता मणिकूटो वज्रकूट इंद्रसेनो ज्योतिष्मान सुपर्णो हिण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैला अरुणा निम्णा अंगिरसी सावित्री सुप्त भाता ऋतम भरा सत्यम भरा इति महानद्या यासाम जलो स्पर्शव नव विधूतिर रजस तमसो हंस पतंगो ऊर्ध्वयायन सत्यांग संज्ञाश्चत्वारो वर्णा सहस्त्र आयुषो विबोधो संदर्शन प्रजनना स्वर्ग द्वारम त्रया विधया भगवंतम त्रयी मयम सूर्यम आत्मनाम जय यजन्ते। तो इसके आप शब्द अर्थ कर सकते हैं, हमारे साथ शब्दार्थ कर सकते हैं। शिवम शिव, यवसाम यवस, सुभद्रम सुभद्र, शांतम शांत, क्षेमम क्षेम, अमृतम अमृत, अभयम अभय, इति इस प्रकार, वर्षाणि सात पुत्रों के नामों के अनुसार सात वर्ष, तेषु उनमें, गिरया पर्वत, नद्यच और नदियां, सप्त सात, एव निसंदेह अभिज्ञाता जाने जाते हैं, मणिकूट मणिकूट, वज्रकूट वज्रकूट, इंद्रसेना इंद्रसेन, ज्योतिष्माना ज्योतिष्मान, सुपर्णा सुपर्ण, हिण्याष्ठीव हिण्याष्ठीव, मेघमाला मेघमाल, इति इस प्रकार, सेतुशैला वर्षों की सीमा बनाने वाली पर्वत श्रेणियां, अरुणा अरुणा, निम्णा निम्णा, आंगिरसी आंगिरसी, सावित्री सावित्री, सुप्तभाता सुप्तभाता, रितंबरा रितंबरा, सत्यंभरा सत्यंभरा, इति इस प्रकार, महानद्य बड़ी बड़ी नदियां, यासाम जिनकी जल स्पर्शना जल स्पर्श मात्र से विद्युता धुल जाते हैं, रजा तमसा जिनके रजो तथा तमोगुण, हंसा हंस, पतंगा पतंग, ऊर्ध्वायन ऊर्ध्वायन, सत्तांग्य सत्तांग्य, संज्ञा नाम वाले, चत्वार चारों, वर्णा जातियां, सहस्त्र आयुषा 1000 वर्षों तक जीवित रहकर, विभूत उपम देवताओं के समान, संदर्शन अत्यंत सुंदर रूप होने में, प्रजनना तथा संतति उत्पन्न करने में, स्वर्ग द्वारम स्वर्ग लोक जाने का द्वार, त्रिया विधया वैदिक नियमों के अनुसार अनुष्ठान करके भगवंतम श्री भगवान त्रयमयम वेदों में स्थापित सूर्यम आत्मानाम सूर्यदेव रूपी परमात्मा को यजन्ते पूजा करते हैं। लंबा है श्लोक, चलिए अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की इन 7 वर्षों के नाम उन 7 पुत्रों के अनुसार क्रमशः शिव यवश सुभद्र शांत शेम अमृत तथा अभय पड़े। इन 7 वर्षों में 7 पर्वत तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं मणिकूट वज्रकूट इंद्रसेन ज्योतिषमान सुपर्ण हिणष्ठीव तथा मेघमाल, और नदियों के नाम हैं अरुणा निम्ना अंगिरसी सावित्री सुप्रभाता रितंबरा तथा सत्यम भरा। इन नदियों के स्पर्श करने या स्नान करने से भौतिक मल तुरंत दूर हो जाते हैं, और प्लक्षद्वीप में रहने वाली हंस पतंग उर्ध्वयान तथा सत्यांग नामक 4 जातियां अपने को इसी प्रकार पवित्र करती हैं। इस द्वीप के वासी 1000 वर्ष तक जीवित रहते हैं। वे देवताओं के समान सुंदर हैं और उनकी संतानें भी उन्हीं के अनुरूप हैं। वे वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को पूरा करके तथा श्री भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य देव की उपासना करके सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं, जो स्वर्ग लोक ही है। तात्पर्य सामान्य अनुभव के अनुसार मूलतः 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव, किंतु अल्पज्ञानी भगवान विष्णु को ब्रह्मा या शिव से श्रेष्ठतर नहीं मानते, पर यह निष्कर्ष अप्रामाणिक है। वेदों में कहा गया है कि इष्टापुरतम बहुधा जायमानम विश्वम विभर्ति भुवनस्य नाभि तदेव अग्निस्तथा वायुस्तथा सूर्यस्तथा ओ चंद्रमा अग्निर सर्वदेवतः। इसका अर्थ यह हुआ कि जो परमात्मा वैदिक अनुष्ठानों को स्वीकारता और उनकी फलों को भोगता है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताएं पूरी करता है, एको बहुनाम यो विदाति कामान, और समस्त सृष्टि का केंद्र बिंदु भगवान विष्णु हैं। भगवान विष्णु अग्नि वायु सूर्य और चंद्र के रूप में विस्तारित होते हैं, जो उनके अंश रूप हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता 9.23 में कहा है, ये भी अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम्। जो सकाम भक्त श्रद्धा सहित अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे भी मेरी ही उपासना करते हैं, परंतु उनकी आराधना विधि पूर्वक नहीं होती। कहने का तात्पर्य यह है कि जो देवताओं एवं श्री भगवान के संबंध को समझे बिना देवताओं की उपासना करता है, उसकी आराधना विधि पूर्वक नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता 9.24 में कहा है, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, एकमात्र मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूं। यह तर्क दिया जा सकता है कि देवता भी विष्णु के समान महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके नाम विष्णु के ही भिन्न भिन्न नाम हैं, किंतु यह निष्कर्ष सही नहीं है, क्योंकि वैदिक ग्रंथों में इसका प्रतिवाद करते हुए कहा गया है, चंद्रमा मनसो जातश चक्षो सूर्यो अजायता श्रोताय दक्ष प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायता नारायण ब्रह्मा नारायण रुद्रो जायते नारायण प्रजापति जायते नारायण इंद्रो जायते नारायण दष्टो वसवो जायन्ते नारायण एकादश रुद्रा जायन्ते। चंद्रमा देवता नारायण के मन से और सूर्य देवता उनके नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं। श्रवण तथा प्राणवायु के नियामक देवता नारायण से उत्पन्न हुए और अग्नि देवता उनके मुख से निकले। प्रजापति भगवान ब्रह्मा इंद्र 8 वसु शिवजी के 11 विस्तार रुद्र तथा 12 आदित्य भी नारायण से उत्पन्न हुए। स्मृति में कहा भी गया है, ब्रह्मा शंभुस तथैर आर्का यस चंद्रमाश्चा शतक्रतु एवं आद्यास तथा वान्ये युक्ता वैष्णव तेजसा जगत कार्यावसाने तु विजयन्ते च तेजसा वितेजश्च ते सर्वे पंचत्वम उपयान्ति ते। ब्रह्मा शंभु सूर्य तथा इंद्र सभी श्री भगवान की शक्ति के फल हैं। जिन अन्य देवताओं के नाम नहीं लिए गए हैं वे भी ऐसे हैं। इस जगत के विनाश होने पर नारायण की शक्ति के ये विभिन्न अंश नारायण में ही विलीन हो जाएंगे, अर्थात ये सभी देवता मारे जाएंगे, उनकी प्राण शक्ति वापस ले ली जाएगी और वे नारायण में विलीन हो जाएंगे। अतः यह निष्कर्ष निकला कि भगवान विष्णु ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, ब्रह्मा या शिव नहीं। जिस प्रकार कभी कभी एक राजकीय कर्मचारी को ही सरकार मान लिया जाता है, यद्यपि वह किसी एक विभाग के संचालक रूप में ही कार्य करता है, उसी प्रकार सारे देवता भगवान विष्णु से न्यायवादी शक्ति प्राप्त करके उनके लिए कार्य करते हैं, किंतु वे उनके समान शक्तिमान नहीं होते। सभी देवताओं को विष्णु के आदेशों का पालन करना होता है, इसलिए कहा गया है कि एक कले ईश्वर कृष्णा और सब भृत्या। श्री कृष्ण अथवा विष्णु ही एकमात्र स्वामी हैं, शेष सभी उनकी आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी सेवक हैं। भगवान विष्णु तथा अन्य भक्तों के इस अंतर का उल्लेख भगवद गीता 9.25 में भी हुआ है। यान्ति देवता देवान यान्ति मद्या जिनोपिमाम। देवताओं को पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और कृष्ण और विष्णु के भक्त वैकुंठ लोक को ही प्राप्त होते हैं, ये स्मृति वचन है। अतः यह मत कि विष्णु तथा अन्य देवताओं को एक समान मानना शास्त्रों के विरुद्ध है। अतः यह मत है कि विष्णु तथा अन्य देवताओं को एक समान मानना शास्त्रों के विरुद्ध है। देवता सर्वोच्च नहीं हैं, उनकी श्रेष्ठता भगवान नारायण की कृपा पर निर्भर है। तो यहाँ शिला भक्ति वेदांत स्वामी का तात्पर्य समापन हुआ। शिला प्रभुपाद की। ओम ज्ञान दिमरंधसे ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेयं श्री गुरो श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवाक्ष च श्री रूपं सागरजातं सैगण रघुनाथवितं तं सजीवम् सावदेतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखानमिताक्ष। नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्षक्तिकं। नमो महावदने कृष्णो प्रेम पदाये ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतश नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तथं वंदे परमानंद माधवं श्रीगुरुदेव तारणं। जय तो श्रीमद् भागवत कक्षा में प्रातःकालीन वंदनीय आप सभी पूजनीय भगवत प्रेमियों का कृष्ण बलराम मंदिर की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आज का श्लोक जिसका अध्याय का नाम ही है ब्रह्मांड रचना का विश्लेषण, तो अभी इससे पहले वाले अध्याय में हमने पढ़ा जम्बू द्वीप का वर्णन, तो किस तरीके से जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं और जम्बू द्वीप में ही हम लोग स्थित हैं। जम्मू द्वीप के एक भारतवर्ष में हम लोग हैं, तो जम्बो द्वीप के अलावा अब 6 और द्वीप हैं, यानी कुल 7 द्वीप हैं। तो अब इस अध्याय में उन 6 द्वीपों की व्याख्या की जाएगी, 6 द्वीप और उनके साथ साथ 6 सागर भी हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है सर्वप्रथम कि ये भागवत कथा सुनाई जा रही है श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा, और सुनने वाले कौन हैं? परीक्षित महाराज। और परीक्षित महाराज कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, और उनको जाना कहाँ है? भगवान के धाम। तो इस ब्रह्मांड में क्यों उलझा रहे हो गुरुदेव? इस ब्रह्मांड से मेरा क्या लेना देना? मेरे पास समय बहुत कम है। आप मेरे को जम्बो द्वीप का वर्णन किया, अब आप मेरे को 6 द्वीपों का और वर्णन सुनाओगे, और समय मेरा नजदीक आता जा रहा है, और ब्रह्मांड में मेरी कोई रुचि नहीं है। आप ब्रह्मांड के बारे में मेरे को इतना सब बताने से लाभ क्या है? आप भी सोच सकते हैं कि हमारे को सीधा राधा कृष्णा की लीलाओं में प्रवेश कराओ, जहां मेरे को जाना है, जो मेरा गंतव्य है, जिसके लिए मैं यहां सब कुछ जल भोजन सब त्याग करके बैठा हूं, और आप मेरे को ब्रह्मांड में उलझा रहे हैं। इसका क्या कारण है, बता सकता है आप में से कोई? क्यों क्यों सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मांड की इतनी व्याख्या कर रहे हैं? क्या कारण है इसके पीछे? हाँ,
भगवान की महान रचना को सुनकर हम भगवान की महत्ता को समझ सकते हैं।
बहुत सुंदर बात कही है। भगवान की महत्ता को सुनकर, या भगवान के इस ऐश्वर्य को, भगवान के इस सारे ब्रह्मांड को जान करके, समझ करके, हम भगवान के प्रति हम सही रूप से भगवान को जान पाएंगे। जैसे जब हम दर्शन करते हैं ठाकुर जी के, राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने की विधि क्या है? हमारे दर्शन कहाँ से शुरू होने चाहिए? चरणों से शुरू होने चाहिए। चरणों से दर्शन करते करते हमें भगवान के मुखमंडल तक पहुंचना चाहिए। तो भगवान के चरण, जैसे भागवतम का पहला और दूसरा स्कंद, और भगवान का मुखमंडल भागवतम का 10वां स्कंद। अगर राधा श्याम सुंदर की सीधी सीधी लीलाओं में हमने प्रवेश किया, तो यानी सारे स्कंद छोड़ करके जैसे 10वें स्कंद के रासलीला में हमने प्रवेश किया, तो उससे हम भगवान की भगवत्ता को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो बता रहे हैं, वो यूं ही नहीं बता रहे। तो यहां नारद मुनि इसी बात को श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कहते हैं, इदम ही विश्वम भगवान इव तरो यतो जगत स्थान निरोध संभव। यह संपूर्ण ब्रह्मांड ही श्री भगवान है, नारद मुनि कहते हैं। भले ही उनसे यह भिन्न प्रतीत होता हो, तो यह ब्रह्मांड जो है भगवान ही है, नारद मुनि बताते हैं। शील रूप गोस्वामी भी कहते हैं, क्या प्रापम चिक्तया बुधया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फलगु कवयते। प्रत्येक वस्तु, यहां तक कि भौतिक वस्तु भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित है, फलतः प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और शील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इस श्लोक का वर्णन इस प्रकार किया है, हरि सेवाया यहा हया अनुकूला विषया बलिया ताहार त्यागे हया बोला। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान से संबंध किसी भी वस्तु को यह सोचकर ना त्यागे कि यह भौतिक है और अथवा इंद्रिय सुख के हेतु है। ये जो भौतिक जगत है, ये जो ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण हो रहा है, तो बताया जाता है कि भौतिक जगत श्री भगवान की सृष्टि का चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा। एक ब्रह्मांड नहीं, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के रोम कूपों से प्रकट होते हैं, उन सबको अगर एकत्र कर लिया जाए तो वो सब कितना है, आध्यात्मिक जगत का चौथा हिस्सा। और अनंत है, किसी के लिए भी उसका वर्णन कर पाना या उसे जान पाना संभव नहीं है। भौतिक जगत को जान पाना संभव नहीं है, भले ही उसे ब्रह्मा जैसे करोड़ों अरबों वर्षों की आयु क्यों ना प्राप्त हो जाए, हम इस भौतिक जगत को ही समझ नहीं पा सकते, तो आध्यात्मिक जगत की तो बात ही क्या है। भगवान ने भगवत गीता में कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुधिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो आठ प्रकार की जो शक्तियां हैं मेरी भिन्न हैं, सेपरेटेड एनर्जी, मुझसे भिन्न ये मेरी प्रकृति, लेकिन सनक ऋषि और नारद मुनि का संवाद होता है और सनक ऋषि कहते हैं, जब किसी व्यक्ति को यह रियलाइज हो जाता है, यह साक्षात्कार हो जाता है कि यह भौतिक जगत भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान कहते हैं भिन्ना प्रकृति रचदा, ये तो मेरी भिन्न शक्ति है, लेकिन जब हमको यह एहसास हो जाता है कि ये जितनी भी शक्ति है भगवान से भिन्न नहीं है, भौतिक जगत भगवान से भिन्न नहीं है क्योंकि भगवान की शक्ति और भगवान अभिन्न है, तो व्यक्ति संसार के चक्र से छूट सकता है। जब हम ये मानने लगे कि भगवान की ये जो अष्टदा शक्ति है ये भगवान से भिन्न नहीं है, और भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता। ये भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत ये मुझसे ही प्रकट होते हैं, मैं ही हूं, मुझसे ही ये प्रकट होते हैं। और जो व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ये सोच करके भजन करता है अत्यंत दृढ़ता के साथ, वो बुद्धिमान है। तो अब भगवान की इन शक्तियों के बारे में जानने का जो रास्ता है वो भी हमको देखना है, और दूसरा इस श्लोक के जो पहले दूसरे श्लोक के बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन कर दूं कि हम जिस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं वो अध्याय क्या है। थोड़ा मैं पीछे जाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये सप्तद्वीप का जो वर्णन है, आपने पीछे पढ़ा है कि महाराज प्रियव्रत के रथ से सात लकीरें बनी जिन्होंने सात द्वीपों का रूप ले लिया, और उन सात द्वीपों के साथ सात समुद्र बने, और वो सात द्वीप जो है महाराज प्रियव्रत ने अपने पुत्रों को सौंप कर और भगवान की सेवा में लगे। तो सबसे पहला जो हमने द्वीप का जो अध्ययन किया है जम्बू द्वीप का, जम्बू द्वीप के बाद अब हम छह द्वीपों का जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि प्रियव्रत महाराज ने जो है जब स्वयंभू मनु चले गए वन में और ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार प्रियव्रत महाराज ने जो है राज को ग्रहण किया, तब उन्होंने उस वक्त विश्वकर्मा की पुत्री वहस्मती के साथ विवाह किया था, आपको शायद याद होगा, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, और उनके गर्भ से उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो अग्निद्र जिनके स्वामी, जम्बू द्वीप के स्वामी कौन थे, अग्निद्र, अग्निद्र जम्बू द्वीप के स्वामी थे, और अग्निद्र के जो 9 पुत्र हुए वो जम्बू द्वीप के 9 वर्ष कहलाए, तो उसका हम पहले विवरण पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में जो 10 पुत्रों में से पहले पुत्र अग्निद्र, उसके बाद में अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है प्लक्षद्वीप। प्लक्षद्वीप कि जो स्वामी हैं वो प्रियव्रत महाराज के पुत्र एतमुज हैं, उसके अलावा जो पुत्र हैं वो हैं यज्ञ बाहु महावीर हिण्यतया धृतपृष्ठ सवन मेधा तिथि वित्रीहोत्र तथा कवि, और एक कन्या उनको हुई थी जिसका नाम था ऊर्जस्वती। अब बताने की बात यह है कि इन 10 पुत्रों में से 3 पुत्रों ने संन्यास ले लिया, 7 पुत्रों को 7 दीप दे करके प्रियव्रत महाराज भगवान की सेवा में चले गए। और इन 7 द्वीपों के साथ 7 समुद्र भी हैं। 7 समुद्र कौन से हैं? लवण का सागर जिसको हम आप यहां देख सकते हैं, और इक्षु सागर गन्ने के रस का सागर, सुरा सागर, धित सागर, दही सागर, दुख सागर मीठे जल का सागर, ये 7 सागर हैं। तो ये 7 द्वीप किनके पुत्र हैं, जिनको इनके 7 द्वीपों के स्वामी कौन हैं? प्रियव्रत महाराज के पुत्र इन 7 द्वीपों के स्वामी। और जो 7 ये सागर हैं इनकी भी एक बड़ी रोचक कथा है कि ये 7 सागर कौन हैं। ये भगवान कृष्ण की एक प्रियसी गोपी विरजा के पुत्र हैं ये 7 सागर। तो कथा आती है, अभी हमारे पास इतना लंबा समय नहीं है हम उस कथा को विस्तार से बताएं, लेकिन आपको संक्षेप में बता देते हैं कि विरजा ने अपने इन 7 पुत्रों को श्राप दिया कि तुम अब दूर हो जाओ मेरे से और चले जाओ भूलोक में, भूमंडल में, और वहां जाकर के अलग अलग रहो। तुम लोग 7 मिलकर के सातों के सातों झगड़ा करते हो, परेशान करते हो, मेरे को भगवान की सेवा नहीं करने देते। तो उन्होंने श्राप दिया। सबसे छोटा जो उनका बेटा था उनको श्राप दिया कि तुम जाओ और जा करके खारे पानी का सागर बन जाओ, संसार में तुम्हारे पानी को कोई नहीं पिएगा, जाओ। और उसके बाद उनके 6 भाई जो उस छोटे बेटे को परेशान कर रहे थे उनको भी श्राप दे दिया, तुम भी जाओ। और वो जाकर के फिर एक गन्ने का सागर बना, एक सुरा का सागर बना, एक दही का सागर, एक घी का सागर, एक दूध का सागर, मीठे जल का सागर। तो ये 7 सागर भगवान कृष्ण के ही पुत्र हैं। और जो 7 द्वीप हैं वो महाराज प्रियव्रत के पुत्र हैं। तो आप हम आते हैं आज के इस श्लोकों पे कि ये जो हमारे को सब बताया जा रहा है इसको कैसे समझा जाए और इसको समझने की विधि क्या है, ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण कैसे हो सकता है, इस ब्रह्मांड को कैसे समझा जा सकता है। तो 3 प्रकार से हमारे को ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे कैसे? एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण देख करके आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और दूसरा अनुमान प्रमाण, अनुमान लगा करके हम किसी चीज का अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे संसार में अंदाजा लगाते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है और सूर्य नजदीक से दूर है, ये क्या है? ये अनुमान प्रमाण, और ये गलत है, चंद्रमा सूर्य से काफी ऊपर है और हम सोचते हैं कि हम चंद्रमा पे होकर के आ गए। तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपका धोखा दे सकता है। आप कभी जा रहे हैं रेगिस्तान में, गर्मी पड़ रही है, आपको जल दिखाई देता है, दूर आपको जल दिखाई देता है, वो क्या है? वो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हुए भी आंखों का धोखा है। अनुमान प्रमाण भी गलत है, हमको लगता है सूर्य देव है, सूर्य लोग दूर है और चंद्र पास है ना। इसको भी अगर हम बुद्धि से समझें तो इसको कैसे समझेंगे? जब हम गायत्री मंत्र करते हैं ओ भू भुआ स्वाहा, पहले भू, भुआ का मतलब सूर्य और सूर्य के मतलब स्वर, स्वर का मतलब स्वर्ग आदि लोक, चंद्र लोक आदि। तो पहले सूर्य लोक है और उसके बाद में चंद्र लोक है, इसी बात से समझा जा सकता। और जब हम सप्ताह की गिनती करते हैं तो संडे मंडे ट्यूसडे, रवि सोम मंगल, तो पहले रवि आया, रवि के बाद सोम और सोम के बाद मंगल, तो समझा जा सकता है। लेकिन अनुमान प्रमाण भी गलत हो रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण भी गलत हो रहा है, तो हमको क्या स्वीकार करना है? हमको शब्द प्रमाण स्वीकार करना। ये जो साउंड वाइब्रेशन है ये कार्य करती है, ये जो वेदों के वचन है ये कार्य करते हैं, नहीं तो हम भ्रमित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य में सदा से ही चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं, इसीलिए वो सही मार्ग तक सही जगह पे नहीं पहुंच सकता। कौन कौन से दोष हैं? कौन कौन से दोष हैं? एक तो है गलतियां करता है और भ्रमित हो जाता है, और हाँ अपूर्ण इंद्रियां हैं, और धोखा देने की प्रवृत्ति। चार प्रकार के ये जो है दोष हर मनुष्य में पाए जाते हैं। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान के इस भौतिक ब्रह्मांड को भी नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हमको क्या करना है? एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषयो विदु, जैसा परंपरा से ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। टेलीस्कोप से हम देख सकते हैं, चंद्रलोक को देखने का प्रयास कर सकते हैं, सूर्यलोक को देख सकते हैं, कुछ दिखाई भी दे जाए तो उससे क्या हमारा ज्ञान अपूर्ण रहने वाला है? तो इस ब्रह्मांड को समझने के लिए हमारे को शास्त्रों का, वेदों का ही एकमात्र आश्रय है। और बगैर शास्त्रों के हम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अब दूसरी बात यह आती है कि आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक में जो तात्पर्य है, उस श्लोक में प्रभुपाद ने मुख्य रूप से इस बात पर बल दिया है कि भगवान ही सुप्रीम है, सारे देवी देवता उनके अधीनस्थ हैं, उनके सेवक हैं। सारे श्लोक में उन्होंने इसी बात को पूर्ण रूप से हमारे को बताया है कि भाई जब हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारे को इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ के करना चाहिए कि हम किस भाव से कर रहे हैं। अगर अज्ञानता में हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जैसा कि शुरू में ही कहा है कि सामान्य आदमी ब्रह्मा विष्णु और महेश को एक ही स्तर पर देखते हैं, तो वो दोषपूर्ण है। तो वो दोषपूर्ण भक्ति हमको नहीं करनी चाहिए। और एक बार कथा आपने सुनी हुई है जब सरस्वती नदी के तट पर देवता लोग भी ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन श्रेष्ठ है तीनों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है। तो फिर उन्होंने भृगु मुनि का चयन किया कि जाओ आप ही जाकर के पता लगाओ। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास और फिर विष्णु जी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने मानसिक अपराध किया, मन से अपराध किया, उनको प्रणाम नहीं किया और ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, उन्होंने उसके उनके क्रोध को भांप लिया। तो भृगु मुनि पुत्री हैं, उनके शिष्य भी हैं, और जाकर खड़े हो गए और प्रणाम नहीं कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आज इसको क्या हो गया। तो इस तरीके से उन्होंने मानसिक अपराध किया। और फिर शिवजी के पास आए तो उन्होंने वाणी से अपराध किया, उनको बहुत बुरा भला कहा। और जब भगवान विष्णु के पास आए तो शरीर से चोट करी, तब फिर उन्होंने समझा कि भाई किस तरीके से भगवान विष्णु जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये जो भौतिक जगत है, जो भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, क्या ये ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को निमित्त बना करके हमें ही सुना रहे हैं, तो हमें इस बात को समझ लेना चाहिए क्या ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में कहीं भी हम चले जाएं, लेकिन सर्वदा क्या है, सर्वदा दुख ही दुख है। तो इस बात को जब हमारे को समझ में आ जाती है, तब हम फिर इस ब्रह्मांड में चाहे कितना भी हमारे को आकर्षण दिखाई दे, चाहे चंद्र लोक का आकर्षण, चाहे स्वर्ग लोक का आकर्षण, अनेक प्रकार की वहां पर आयु है, एक एक हजार वर्ष, दस दस हजार वर्ष तक लोग जीवित रहते हैं, सुख भोगते हैं, इतना सुख भोगते हैं कि सुख भोग भोग करके ही थक जाते हैं, उनके पास उसके बाद कुछ उद्देश्य नहीं रहता। तो ठाकुर जी हमारे को इन सब जगहों से मानसिक रूप से लेके चल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है, और भगवान कहते हैं चूंकि तुमको मेरे घर आना है तो यहां से सैर सपाटा करते चलो ना, ये आप सब देखते चलो, ये सागर, ये लवण का सागर, ये गन्ने के रस का सागर, ये दही का सागर, या जाना चाहते हो आप वहां बताइए, हरि बोल, जाना चाहते हैं नहीं जाना चाहते, तो जाना तो है तो इसी माध्यम से जाना अच्छा है। सशरीर जाने से बेहतर है कि आप और हम इस माध्यम से श्रीमद् भागवतम के माध्यम से हम यहां से होते चले। स्वर्ग लोक का भी विवरण आएगा, नरक लोक का भी वर्णन आएगा, तो हमें नहीं जाना, हाँ इस माध्यम से जाया जा सकता है। तो वास्तव में हमारा ध्येय, हमारा उद्देश्य यही है कि हम भगवान के धाम वापस जाना है, और उसी उद्देश्य से लेकर के हमारे को भक्ति करनी है। भक्ति करने के उद्देश्य भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन कैसे भी करके हमारे को अपने उद्देश्य को क्या करना है, शुद्ध करना। तो शुद्ध करके हम, जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो जाते, तब तक हमारे भगवत धाम जाने की कोई संभावना नहीं है। एक लेश मात्र भी अगर इच्छा हमारी इस भौतिक जगत में भोगने की रह जाती है, तो भगवत धाम जाने की हमारी कोई भी योग्यता नहीं रहती, क्योंकि भगवान हमारे हृदय पटल में बैठे हैं, और भगवान हमारे हृदय का पूर्ण रूप से उसका एक्सरे निकाल सकते हैं, एक्सरे निकालते ही रहते हैं भगवान, हमारे हृदय में कितनी भोग करने की वांछा अभी बाकी है। तो जब तक हम इस बात को पूर्ण रूप से समझ नहीं जाएंगे कि इस संसार में हमारे को कितना भी भोग प्राप्त हो जाए, लेकिन ये स्थान क्या है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, हमारे को इस संसार में, इस दुख भरे संसार में आना पड़ेगा, जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। भगवान कहते हैं कि आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप कितनी भी अच्छी स्थिति में हो, लेकिन आपको प्रतिदिन बैठे बैठे इन चार प्रकार के दुखों का दर्शन कर लेना चाहिए। किस प्रकार से हम जन्म का कष्ट उठा करके आए, किस प्रकार से मृत्यु हमारे को कभी भी दबोच सकती है, और बुढ़ापा, बीमारी, इन चार प्रकार के दुखों का प्रतिदिन दर्शन कर लेना चाहिए, तभी हम दर्शन करते करते फिर हमें इन दुखों को सहना नहीं पड़ेगा। रोज मृत्यु का दर्शन करोगे तो मृत्यु फिर रुलाएगी नहीं, रोज बीमारी का दर्शन करेंगे तो बीमारी भी रुलाएगी नहीं, बुढ़ापा भी रुलाएगा नहीं। तो भागवतम के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड में घूमेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन यही समझना है कि ये सब भगवान के भोक्तारम यक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छते। ये सारी जो भोग की वस्तु है चाहे संसार में चाहे भगवान के धाम में, ये सब भगवान के लिए, हमें भोक्ता बनने का प्रयास नहीं करना है। और उससे हम छूट कैसे सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं? तो छूटने का हमारे को जो फॉर्मूला जब महाप्रभु आए उन्होंने दिया कि भाई जब तक आप भगवान के नाम का जप नहीं करोगे तब तक इन भोग वांछाओं से आप नहीं छूट सकते। हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव नास्तेव गतिरन्यदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र को जप करने से, हरे कृष्णा महामंत्र एते स्वभाव जे जपे सही उपजाए भाव। हरे कृष्णा महामंत्र का जप जो भी करेगा उसको कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और इन भोगों से, इन भोग ऐश्वर्यों के जो ये दिखावे हैं इनसे हम छूट जाएंगे। तो यहीं हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। इताई गौर प्रेमानंदे हरे हो। इस ब्रह्मांड में ही हैं और इन पृथ्वी से ऊपर या मतलब इसको आप देख नहीं सकते। इन सागरों को हम केवल एक ही सागर देख सकते हैं यहाँ जो जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, लवण सागर। और सागरों को आप केवल भागवतम के माध्यम से ही देख सकते हैं। हाँ, ये पूरा जम्बू द्वीप है। अब उन्होंने किस ख्याल से या कैसे बताया मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम जिस भारतवर्ष में जिसको पूर्ण विश्व कहते हैं ये जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप भारतवर्ष भारत खंडे, तो जम्बू द्वीप में भारतवर्ष पूरा विश्व है और अब जिस भारत में हम रह रहे हैं वो भारतवर्ष का एक हिस्सा भारत खंडे। जब आप कहीं पूजा भी कराने जाएंगे ना तो ये तीन बातें बोली जाती है, जम्बू द्वीप भारतवर्ष भारत खंडे। तो और द्वीप में हम प्रवेश नहीं कर सकते। तो वो सब जम्बू द्वीप ही है, सब जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।